ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगनसदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं तम नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। जब गुरु महाराज शुरू में जब रुक गए, गांव से भगत लोग आने जाने लगे, तो महाराज भक्तों से पूछे रे, ये 500-2500 मकान बने पड़े हैं सुनसान, मालिक मुख्तियार कोई नहीं, ये किसने बनाया? तब लोगों ने बताया जीवनी, महाराज 125 साल पहले एक सिद्ध बाबा यहाँ निवास करते थे, करीब 700-800 गाय थी, हर समय 400 गाय दूध दिया करें और खीर बना करें, मालपुआ बना करें, पूरी न बने, खीर मालपुआ का भंडारा चला करें, गृहस्थ भगत रहे, बड़े बड़े जमींदार शिष्य थे, 4 गांव जमींदारों ने अपने गांव दे दिए राजाओं ने, 7 उनके विरक्त शिष्य थे, ये था वो था, वो उनकी तई रखी हुई, तई करीब 12 फीट करीब 10 फीट करीब लंबी चौड़ी रहे, गोल गोल, और अभी सड़ी पड़ी थी वहां पर, जिसमें मालपुआ छनत रहा। वो महापुरुष वृंदावन की साइड के थे, ब्राह्मण घर का शरीर था, घर वाले भी पता पा गए, तो आस्ते आस्ते, पहले तो वैसे ही आए दर्शन करने, देखा चारों तरफ माल पानी का चकाचक रेला, तो पहले तो भोजने करे आए, फिर आस्ते आस्ते बांटने लगे मालपुआ खीर, फिर आस्ते आस्ते टिक गए सेवा में, जो गुरु महाराज के कृपा पात्र महात्मा लोग थे उनसे राग द्वेष करने लगे। जो कोई सदगुरु के पास कल्याण की जाता है ना, उसको माल पानी से, इन झोपड़ियों से क्या मतलब, इन मकान इन खंडहरों से क्या मतलब, उन्हें महापुरुष की विद्या से मतलब है, कल्याण भगवत पर्यंत दूरी तय करने से मतलब होता है, वो छोड़ के किनारे हो गए, कोई चेला नहीं बचा उनके राग द्वेष देख के। जब शरीर छूटा, एक बैल को सामने खड़ा करके देखते देखते शरीर छोड़ दिया, जब शरीर छूटा तो उनका भतीजा रामू बाबा गद्दी में बैठे, 10 महीना में बोले, भैया मैं इस गद्दी लायक नहीं हूं, छोड़ के भाग गए। उनका छोटा भाई श्यामू बाबा गद्दी में बैठा, उसकी चाल ढाल देख के सिद्ध बाबा के भक्तों ने ही उसको मार डाला 10वें महीने में। तब उसका छोटा भाई बद्री बाबा गद्दी में बैठा, वो वहां गद्दी पर पहुंचा ही नहीं अनसुईया, वहां से 8 किलोमीटर दूर सिद्ध बाबा का ही एक बगीचा किसी भगत ने दान दिया होगा, सिद्ध बाबा तो आसन छोड़ के कहीं गए नहीं, सुनते रहे कि कोई गांव दिए है, कोई बगीचा दिए है, महापुरुष थे। फिर वहीं रह गया। वो एक राण उनके साथ रही, उसके दो लड़के हुए। इतना राग द्वेष करके एक लड़का तो मर गया, बद्री बाबा वो इधर उधर मर गए। वहां गुंडों का राज हो गया, गायें सब तितर बितर हो गई। वो औरतिया जो रही है वो फिर अकेली बची। भाग भाग के जाया करें, हमारा है हमारा है, लाठी लेके कोई साधु रुके को के इतनी काऊ काऊ करें तो महात्मा ने टीके। वो मर गई। तब फिर वहां पर 50-50 पंडितों को बैठा के पूजा पाठ करवा में कि ताकि इसमें भूत समा गया ठीक हो जाए। पता नहीं के चुतरे में हाथ लगा के पटक दें तो पंडित हुए भागे वहां से। लोटी आचमनी अब आसनी सब कुछ वहीं छोड़ के भाग जाए तो आसनी है बहुत। अभी महाराज के पहुंचने पर भी पड़ी हुई थी वहीं पर, कोई छुए ना, जो छुई वो मारा जाए। सिद्ध बाबा सजीव रूप से वहां तखत पड़ा है। जब महाराज पहुंचे तखत हम बैठे, तखत मंगाया वापस भी कर दिया। अब पूछा ही किसका, बोले महाराज वही जगह है ये, सिद्ध बाबा के आसन पर कोई बैठ ही नहीं सकता। तो बोले कोई वंश में बचा है, बोले एक लड़का है, एक ठाकुर के यहां पल रहा है सतना के पास, बुला उसको। तो एक 15-16 साल के बीच का लड़का आया, पतला पतला गिलेरी ऐसा लटम पटम गोरंगार। बोले करे तू सिद्ध बाबा का नाती है? बोले हाँ महाराज मैं नाती हूं। तो बोले वहां क्या कर रहा? बोले पेट पालत हूं और क्या कर। बोले पेट ने पाल चलाओ तुम्हें खाना मिलेगा। गया तीसरे दिन उतनी बड़ी एक लड़की लेके चलाया। बोले करे ये कौन है रे? मोर औरत है महाराज। बोले करे हरामी साले एको बार नहीं कहा, मोर ब्याह हुआ है, भाग यहां से, अब नहीं रहना यहां पर, हम तो सोचे तू ही पर है। तो यहां बैठ के लड़की रोवे, वहां बैठ के लड़को आए। तो महाराज कहे हे भगवान दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आप होता ही, भगावे डंडाओ मारे तुम्हें। तो रो उनकी रुलाई, फिर सर रोवे जाइबे न करे। रात रह गए, फिर अरे 2-3 महीना फिर रुकी गए। अब बच्चे तो बच्चे, वो 15 साल की लड़की हो गई। फिर कबो महाराज का झूला झूलावे वो लड़किया, बना लिया झूला अपना, हल्ला हो गया चित्रकूट में, परमहंस जी के लड़का लड़की आए हैं। महाराज बोले हे भगवान कहां से आफत आ गई। गुरु महाराज के पास जैसे आप लोग ऐसे कानपुर साइड से कहीं से 2-4 सत्संगी आ गए। शाम को चर्चा चल रही थी धुने पर, उनकी बढ़िया प्रश्न चल रहा था। उधर वो दाना वहां काऊ काऊ कर रहे थे, वो उसको कुछ कह रही थी, वो उसको कुछ कह रहा था। इतने में उस लड़कवे ने एक झापड़ मार दिया। उस लड़की आके अपने औरती आके तिन्ना के उठी और गायब हो गई। अब लगा ढूंढने तो पाया ही नहीं। अब गिर पड़ा महाराज के आके, सत्संग चल रहा उसके बीच में, महाराज हमार मेरिया भाग गई। बोले करे तेरी हरामी की साले, मेरिया जब इतनी प्यार है तो काहे झापड़ मार रहा रे, घोड़े काहे नहीं गिरे? जब इतनी प्यार है तो काहे झापड़ मारा, आरती काहे नहीं किया, घोड़े काहे नहीं गिरा, ढूंढ साले कहीं हुई। सत्संग चौपट कर दिया सर। अब दौड़ा एकदम भी तहसा दौड़ के गया अनुसुईया जंगल में, फिर इधर हल्ला किया उधर हल्ला किया, नहीं बोली। तो फिर एक घंटा बाद महाराज ने कहा ढूंढो रे, जंगल का मामला, शेर ऐसे ही घुमा करे जैसे गांव के आजू बाजू शियार घूमत है, रात भर शेर ऐसे ही घुमा करे पगडंडियों से, बब्बर शेर भी रहे, धारीदार रहे, गुलबाग रहे, पांच प्रकार के शेर थे, भालू अजगर, ढूंढो तो सब ढूंढने लगे इधर उधर, जो तीन चार आदमी रहे वो भी ढूंढने लगे, और महंतुआ ढूंढने के लिए सीढ़िया चढ़ गया, बने 200 करीब सीढ़िया है, तीन तीन सीढ़िया डाक कर चला जा रहा था, रो तो चला जाता रहा, ए फलानी तो कहां छिप गई, कहां चली गई, भाव शेर खा गया होगा महाराज। महाराज उठ के खड़े हो गए, महाराज ने विचार किया कहां हो सकती है, तो शगुन मिला छत के ऊपर, तो महाराज एक एक कदम चलते हुए छत के ऊपर चले गए तीसरे मंजिल पर। तीसरा मंजिल मैंने पहाड़ की लेबल है, वहां भी खड़ा पहाड़ तो है, कितना मंजिल बनाओ पहाड़ तो बराबर रही। जहां चढ़े तो एक छत बीच में मुड़ेरी 1.5 फीट के, फिर दूसरी छत फिर मुड़ेरी 1.5 फीट के, वो दूसरी मुड़ेरी के पास ऐसे लेटी हुई थी, काला काला दिखाई पड़ा। महाराज बोले 10 दिन पहले हमने यहाँ झाड़ू लगवाया था, यहाँ सफाई थी, कोई कोल भील या लकड़ी रख गया क्या, या अजगर रैंक के चलाया पड़ा है क्या, क्या हो सकता है। एक एक कदम आगे बढ़े तो पड़ी थी, उठ के यूं चली, तो महाराज को भयंकर अपशगुन हुआ, तो उठाए छड़ी, देव चुड़ैल कहीं हर जाए, जमन सिर हुए ढूंढे का रहा तो गांव में कमी कौन है, वहां कहीं चली जाती है, हम बुढ़ापा के ऊपर झपटे थे, जा खरी खोटी कहा तो अपनी मर्यादा में आ गई। अरे इतनी करीब आ गई, महाराज मार देते गिरा देते, छड़ी लिए रहे तो डर गए, इतनी करीब आके जब एकदम जाम होके खड़ी हो गई, तब महाराज के हैं बोले देख रे, यह देख यहां पड़ी हुई है, आया ले गया। तब उस दिन आदेश मिला पाप गृह खत्म। बोले हे भगवान, ये मासूम बच्चों में घुस के पाप गृह बैठा है, हमें तो कल्पना ही नहीं, ये 15 साल के बच्चों में भी पाप गृह होता है, पाप गृह खत्म। उसके बाद ये मिलने लगा, तोरे दाहिने हाथ में ये गुण है, बाएं हाथ में ये गुण है, और ये काल से निवृत्ति हुई। उसके बाद मिला कि हमारी स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर मिट गया, इनसे मुक्ति मिली, और ये सेल स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, जो स्वर्णिम पुरुष है, हिरण्यगर्भ है, उसके दर्शन हुआ, और इसी स्वरूप में तुम्हें रहना है। इसके बाद में ये लगातार ये मिला, पाप गृह यहां तक पीछे किया, फिर पाप गृह खत्म। तुरंत बड़े सवेरे एक आदमी भेजा पथरा गांव, वहां का नंबरदार गणेश पंडित को बुलवाया, वे बड़े आदमी थे, भगत आने जाने वाले, बोले कितना भी रुपया लगे लगाओ, एक घर खरीदो और इनको ले जाकर उसी में रख दो। तो बोले महाराज एक लाला यहाँ छोड़ के चले गए, बढ़िया बना हुआ घर है, बिकाऊ है, 350 रुपया मांग रहा है, बोले जल्दी दे दो, भावताव मत करना। तुरंत वो घर खरीद दिया और उन दोनों को उसी में रख दिया। फिर वो नहीं बोले कि हम नहीं जाएंगे, अब तो पकड़ में आ गए ना, फिर खाएं क्या, तो 7 दिन में वो लड़कवा आवे, हम भूखे मर रहे, बोले ले जा जो हो दिलवा दिया करे। फिर उनके परवरिश के लिए वहां एक मंदिर पड़ा था खंडहर मनसुईया का, महाराज ने वो दिलवा दिया। हम रोज हम कहां तक आटा देंगे इसको, दिलवा दिया। आज भी उसके नाती वगैरह जी रहे उसी में, जीव छूट गया पाप गृह से। ये कहीं से भी हो सकता है, इसीलिए साधकों को महाराज के हम अपनी माता जी को रखें, बहन को रखें, बेटी को रखें। लोग क्या जाने, लोग तो यही कहेंगे बाबा मेहरिया रखे। इसलिए यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम, यद्यपि शुद्ध है बिल्कुल किंतु लोक दृष्टि के विरोध में है तो नहीं करना चाहिए। एक और घटना, कुंभ मेला चल रहा था, कुंभ मेले में हल्ला मचा हुआ था कि सतयुग के संत आ गए, और वहां भीड़ कुंभ की प्राय सारी भीड़ उधर उनके यहां दर्शनार्थ जाया करें। महाराज के मैं क्या सुन रहा हूं, ये असंभव है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुष, शरीर तो एक वस्त्र है, स्वरूप की प्राप्ति के पश्चात वस्त्र का प्रयोजन खत्म हो जाता है, समय पर वस्त्र का अंत हो जाता है, शरीर भी छूट जाता है, राम भी नहीं रखे, कृष्ण भी नहीं रखे, कोई तो महापुरुष का शरीर नहीं दिखाई देता। ये सतयुग का संत मैं क्या सुन रहा हूं, जो ही मेला आवे 200-300 आदमी कुंभ की भयंकर भीड़ में से छंट छूट के अनसुया भी पहुंच जाया करे, 250-300 कभी 350 जंगल में पत्थरों पे पड़े रहे सब यही बता में। तो महाराज के हमरो मन हो गया, है तो असंभव, है तो बिल्कुल गलत, लेकिन मैं सुनत का हूं, चलो देखिया हूं। खड़े हो गए चलने के लिए, तब भगवान ने मना किया मत जाओ। बोले अच्छा प्रभु नहीं जाएंगे। मन रहा कि क्या है आखिर ये बवाल, रुक गए। तीसरे दिन एक महापुरुष आए, सेव की तरह लाल शरीर, एकदम चमड़ी के भीतर से दिखाई पड़े हो खून, वास्तव में पहाड़ के जन्मे हुए थे वो, 30-32 करीब उम्र थी, स्वस्थ शरीर, फर्स्ट क्लास चेहरा, और प्रणाम किया बैठ गए। महाराज ने पूछा कहो स्वामी जी कहां से आ रहे हैं? बोले प्रयागराज से महाराज। तो हमने सुना है कि प्रयागराज में सतयुग के कोई संत आए, कहा झूठे कहा सही है? आपने भी देखा? बोले हम ही रहे महाराज। बोले बोला ब्रह्म दूर हो गया, हम फलानी जगह पहाड़ में जन्मे और पहाड़ी में भजन करते थे, कुंभ मेले में आए कि बराबर 1 महीना हम रहेंगे, लेकिन जनता पीछे पड़ गई, तो महाराज 15 ही दिन में अंजल उठ गया, भीड़ के मारे भजन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए छोड़ के चले आए महाराज। बोले भले चले आए, उनको भोजन की व्यवस्था करवा दिया। शाम हुई तो बोले महाराज कहीं एकांत जगह होती तो बैठ के रात में मैं भजन करता, श्वास का जाप करता, भजन जानते थे, अच्छे महात्मा थे। बोले ठीक है, खाली हमारे आजू बाजू भीड़ है, बाकी पूरा जंगल एकांत है, जहां चाहो तहां बैठो, इधर ऊपर चले जाओ, एकांत ही एकांत है। वो सीढ़िया पकड़े और चले गए ऊपर, जिस तख्त पर शुरू में गुरु महाराज बैठते थे ना, उसी पे जाके बैठ गए। रात को 9 बजे करीब एक सफेद दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग महात्मा के सामने खड़े हो गए, सफेद सफेद दांत, उठो यहां से। ये हमारी जगह, आप तुम क्यों बैठ गए यहां पर, तुम यहां बैठने लायक नहीं है, उठो यहां से। तो सोचा मैं उठ के जाऊं तो पीछे से गर्दन पकड़ लेगा। तो ओम जप के अपने चारों तरफ गुड़ला खींच दिया, बीच में डट के बैठ गए। बोले मैं नहीं उठ सकता, बोले मैं ब्रह्मदंडी हूं, मुझे नहीं कोई हटा सकता। तो बोले मैं भी ब्रह्म हूं, मैं हटा के दम लूंगा। बोले तड़का तड़की हुए लगा तो महाराज उसी समय सोच करने के लिए लोटा लेकर निकले, थोड़ी दूर जाए ये आश्रम है, ये पेड़ इतनी दूर, कोने इतनी दूर। तो वहां से तड़का तड़की सुना, लौट के आए, बोले करे हमने तो स्वामी जी को एकांत में भेजा था, वो कैसे कौन खटपट गया पहुंच गया, और कैसे शास्त्रार्थ करते हैं, बहुत तड़के थे, कहते मैं ब्रह्मदंडी हूं, उसके विरोध में आवाज आ रही मैं भी ब्रह्म हूं, और तड़का तड़की हो रहा है। महाराज किसी को जांच के लिए भेजने वाले थे, इतने में किसी ने तवा मांगा, किसी ने आग मांगा, किसी ने बुटलोई मांगा, जो आश्रम में जो कुछ है दो चार छह लोग मांग ले महाराज दिलवा दिया करे। जंगल में आके फंस गए, ने होटल थी ने चाय की थी ने बतासा, कुछ नहीं मिले वहां पर। तो महाराज जी भर रहे तो जो कोई तवा मांगा, कोई कड़छली मांगा, कोई आग मांगा, कोई बोटलई मांगा, दे दिया करे। लोग पत्थरे पर अपन लिट्टी कोई बनाया, टिकड़ बनाया, कोई नमक से खा लिया, यही सब करा। स्वयं पाकी, स्वयं पकावे खावे, नहीं तो क्या करें। होटल दुकान वहां से 15 किलोमीटर दूर चित्रकूट में घनघोर जंगल, बड़ी सवेरे 4 बजे स्वामी जी पहुंचे। बोले अरे महाराज कहां भेज दिया हमको, वहां तो एक ब्रह्म बैठा है। 9 बजे आके खड़ा हो गया। तो बोले उठो यहां से हमारी जगह, हमने सोचा मैं उठ तो जाऊं पीछे से गर्दन ने पकड़ ले। तो हमने ओम का जाप करके गुड़ला खींच दिया। बोले मैं ब्रह्मदंडी हूं, बोले मैं भी ब्रह्म हूं। और फिर रात भर महाराज ने भजन कर पाए, ने एक पल जप की ले पाए, जहां थोड़ा सा भजन में लगे तो सामने आके खड़ा हो जाए। रात भर महाराज एक पल भजन नहीं ले पाए, ने चैन से रह पाए। महाराज ऐसी जगह भेज दिया आपने। तो बोले स्वामी जी मुझे मालूम था, मैं जानता था, मैं रहा हूं वहां पर, हमारे चित्त से उतर गया, आप चिंता नहीं करें, वो अनिष्ट कर ही नहीं सकते, वो ये महात्मा है, इस जगह के मालिक हमसे भी मिले हैं, और वो जैसे स्त्र का जो साधु था उसी स्त्र से उनसे बात किया करते हैं, और तुमसे भेंट हो गई, चिंता नहीं करें, आपका कल्याण ही कल्याण है। क्या कहा? बोले यहां मत बैठो, इस पे बैठने लायक नहीं, यही ने कहा भजन करो आप बैठने लायक हो जाओगे, और जाओ दूसरी जगह बैठो, यही तो कहा। तो जो सतयुग के महात्मा थे ना महाराज, सोचे मैं सुनत कहा हूं, बैठे बैठे ब्रह्म दूर हो गया। तो बगड़ बाबा की घटना, सिद्ध बाबा के तख्त पे से उठा के हटा दिया, दो झापड़ मार के भगा दिया, एक वैष्णो संत हटकी के तख्त में बैठा तो उनको पटक दिया। गुरु महाराज से कहा महाराज आपकी जगह नीचे हमारी जगह है। गुरु महाराज ने तख्त मंगाया तो उस पर बैठे रहे, तो कुछ नहीं बोले। महाराज समझ गए कि बड़े अच्छे महापुरुष थे, थोड़ा चूक गए हैं, पतित भी नहीं हुए, थोड़ा चूक गए हैं। वास्तव में घर वालों ने आके वहां अड्डा लगा लिया, मना नहीं कर पाए। बस इतना ही चूक गई। वो मरना और साधु होना बराबर है, और कोई दुनिया में हमारा है भी घर वालों के नाम पर कोई नहीं। तो फिर बाद में महाराज ने 6 महीने तक सिद्ध बाबा के निमित्त ही भजन किया, ब्रह्म विद्या का चिंतन किया, फिर सगुण मिला कि सिद्ध बाबा का उद्धार हो चुका। तब उनके नाती को बुलाया, करे महंतवा जा गया हुआ। बोले महाराज गया में हमारी श्रद्धा नहीं। बोले देख तोरे श्रद्धा से कुछ होने वाला नहीं है, जो कुछ करना धरना मैंने कर दिया, हो आ एक मर्यादा है रे, तुम लोगों के हिंदू धर्म की एक मर्यादा है, इसलिए हुआ। सिद्ध बाबा कि वहां जो उत्पात हो रहा था वो तो हुआ फिर खत्म, उनका उद्धार हो चुका, जो करना मैं कर चुका हूं, लेकिन मर्यादा इसलिए हुआ। तो बोले महाराज अकेले कैसे जाऊं, तो बाजू में नाऊ बैठा था, वो भी उसी गांव का था, बैकलवा नाम रहा। बोले इस बैकलवा को ले जा। तैयार हो गया तो गांव के पंडितों ने कहा ए बगैर मंत्र लिए गया तीर्थ सिद्ध नहीं होता। तो भागा भागा आया, बोले गुरु महाराज मैं पुरोहितों से मंत्र नहीं लूंगा, आप देव। तो महाराज की स्वभाव में रहे गाली मुहे पे रहा करे, धत्तरी धूर्त की, अरे ओम राम शिव कोनो एक नाम जपा कर, ओम ओम जपा कर, चला गया। अब वो गया पहुंचे तो पंडा लोग हाथ पांव बांध के बोले बोलो गुरु मंत्र उच्चारण करो। तो नवा के धत्तरी धूर्त की ओ भगत जी गाली दे रहा है, ये भगत गाली दे रहा है। तो बोले करे गाली काहे देते। बोले मैंने कोई गाली नहीं दिया, कर क्या रहा था। बोले गुरु मंत्र पढ़ रहा था मैं तो पंडा लोग बोले यार और वो कुछ कहा गुरु महाराज। बोले और ओमो कहा। बोले भैया ओम जप दे, धुर मंत्र हम सुन चुके तो बोले अच्छा। फिर गया होके आए, उस दिन से कोई उस तख्त में बैठे उस गद्दी का उत्पात सदा के लिए शांत हो गया। और सिद्ध बाबा के थोड़ा सा अधूरापन रहा, हल्कापन, वो गुरु महाराज की कृपा से दूर हो गया। करबी के एक पंडित जी आवा जावा करें, बोले महाराज एक बार हमारे घर चलो। बोले यार भगवान का आदेश है मैं यहीं रहूं। भाविक पंडित बहुत पीछे पड़े तो भगवान से पूछा इनके घरवा तक होल नहीं, तो भगवान का कोनो हर्जा नहीं, उठ के चल दिए। जब भगवान ने मना नहीं किया हाँ कर दिया, चल दिए। उसमें भगवान का भी कुछ लीला छिपी थी, इसीलिए तो आदेश दिया। बोले चल फिर, चित्रकूट 84 कोस का क्षेत्रफल है, हमें चित्रकूट में रहना है, रहने की जगह ये है लेकिन चित्रकूट में हम घूम तो सकते हैं ना, चल फिर, भगवान मना नहीं कर रहे। उतने के लिए तोरे घर तक चलो हो आते, हमें आसन नहीं छोड़ना चाहिए लेकिन चल फिर, वहां तक के लिए कोई मना नहीं है, संत इतनी दूर घूम सकते हैं। छड़ी उठाया, कमंडल ले लिया, कमरी लेके पंडित पीछे पीछे चले, पहुंच गए फटक शिला। वहां रहते थे निर्मल दास जी, उनकी जटाएं इतनी लंबी रहे जब चले तो पीछे जमीन पे 4-6 इंच ऐसे घिसला करे, झाड़ू लगाते हुए इतनी लंबी जटा, बड़ा नाम था। कांतानाथ की परिक्रमा रात को 3 बजे किया करें, डंडा लेके जटा छित्रा के रामरट रामरट, सामने से हट रामरट, ये नारा लगाते हुए परिक्रमा किया करें नियमित। बड़ा नाम रागी बड़े भजनानंदी है, वही फटक शिला में ये नियम उनका अच्छा चला सालों। और यू रहा करे, बैठे कुछ लिख रहे थे, पंडित जी ने परिचय दिया कि सिया के परमहंस जी पधारे हैं। महाराज ने प्रणाम किया, पंडित ने कंबल बिछा दिया और बैठ गए। जहां महाराज का नाम सुना तो लिखना बंद कर दिया और चश्मा उतार के रख दिया और बोले, तुम ही हो अनुसुईया के परमहंस जी, गाली क्यों देते हो, किस शास्त्र में लिखा है? तो महाराज बोले, अरे हम अपने आसन पर गाली देते हैं, यहां तो देते नहीं, कोई कारण है इसलिए गाली देते हैं। हमें भी मालूम है साधु को गाली देना शोभा नहीं है, गाली देतन पावो शोभा, ने कोई कारण है इसलिए देते हैं। उन्हें कैसे बतावे कि भगवान का आदेश से? बोले, किस शास्त्र में लिखा है? सिद्ध बनते हो, कौन सी सिद्धि जानते हो? बहुत समझाए माने ही ना, एक आधा घंटा तक जग कुछ न कुछ कहते रह गए। तो महाराज बोले, बस बहुत हो गया है, तोरे भरे के हम सचों के सिद्ध हैं, 15 दिन में तोरे सज्जी कर्म न हो जाए तो हम साधु नहीं। बोले, जाओ जाओ, चमारे के सरपले से डांगर नहीं मरत है, अब तू ही जनी हो मरे थे कि नहीं मरे थे, चलो रे बहुत हो गया। पंडित कह रहे, महाराज जी बैरागी हैं, का जाने आप कहे नाराज हो गया। बोले, यार बहुत हो गया, बहुत सुधारे ते बड़ दोषु, बहुत सुधारना भी एक दोष है, सुखल से भेंट हो गई, बेकार पिछड़ा है, चल दिए। और जहां रामघाट पहुंचे चित्रकूट, तो महाराज बोले, यार सगुन मिल रहा है पंडित, यहां कोई अच्छे महात्मा हैं, कोई अच्छे महापुरुष यहां पर हैं। निगाह दौड़ाई तो नदी उस पार रेते में एक आदमी पड़ा था। महाराज के वही हैं, घूम के गए तो एक महात्मा लेटे हुए थे, सरकारी स्टेट के राजपुरोहित थे पहले, वो छोड़ छाड़ के साधु हो गए, तो वही पड़े हुए थे। जहां महाराज को देखा तो बुखार में दुत थे, उठ के खड़े हुए, लिपट पड़े, गले मिले, बोले, भल आ गये हो, आंखों में आंसू थे, भल आ गये हो और बड़े समय से आ गये हो। बोले, अरे आपके आंखों में आंसू, अवस्था ही आंसू वाली है? तो बोले, मैं रो नहीं रहा हूं, ये खुशी के आंसू है कि आप बड़े समय से आ गये हो, इसी बात के आंसू है। और महाराज ने एक उस दिन महाराज के पास एक चद्दर थी, चद्दर ओढ़ा दिया, लेटा दिया, बस भजन करो, सांस में लगो, बस प्रणाम किया और लेट गए। महाराज जब तक चले नहीं गए तब तक वो दर्शन भी करते रहे, देखते रहे। जब करवी पंडित के यहां गए, वहां से फिर जो कुछ प्रसाद मिला वो तो लेना ही था, फिर लौट आए। जब लौटे तो पुरोहित जी की अर्थी घूम रही थी पूरे चित्रकूट में, सब पंडा सारी जनता साथ में थी, पुरोहित जी की जय, संत जी की जय। वो ये कह रहे थे, आप आ गए हो, बहुत समय पर आ गए हो, हमारे खुशी के आंसू हैं, दुख नहीं है। बड़े अच्छे महापुरुष थे वो, पुरोहित ही छोड़ के आप एक बार भाग आए, घाट पे बैठ गए, खाली गमछा ऐसे खोस गए, जैसे पंडित लोग खोसे ना, पीछे खोस दिया बैठ गए और कुछ नहीं। फिर बैठ के भीख मांगे और जो पैसा हो जाए 8-10 आना तो लड़कन के बुलावा और जुआ खेल लें, जुआ खेल के पैसा हार जाए जानबूझ के, बोले हाय रे तकदीर हमारे कर्म में कुछ हो नहीं लिखा, जबकि वो अरबपति आदमी रहे हैं, अरे राजपुरोहित रहे हैं, और फिर भीख मांगे और लड़के परच गए रहे तो चिपके रहे कि बाबा के पास पैसा हुई तो खेलो, इन्हें तू जीतेगा नहीं, जीतेगा हम ही के हैं। इतने में राजा साहब उधर से तीर्थ करने आए तो बोले अरे गुरु महाराज तो यहां बैठे हैं, तुरंत तख्त मंगाया, गद्दे मंगाए, बैठाया तो हल्ला हो गया कि बोले अरे तू राजपुरोहित है, बोले महाराज कुछ लिया नहीं, बोले नहीं पीछे पड़ हम बहुत शांति से हैं, बोले एक बार श्री मुख से भागवत सुना दो, तख्त बैठ के 15-20 मिनट सुनाया, बोले अब जीव छोड़ दे, वो चले गए। राजा ने कहा जितनी होटल है कहीं भी है पुरोहित जी जहां भी प्रसाद पावे राज खजाने से आपको अदा कर दिया जाएगा, पैसा भी जमा कर दिया, उस दिन से किसी हलवाई का खाना न खाए। रजवा का पैसा नहीं लिया न खाना खाए, बड़े अच्छे महात्मा थे। लौट के आश्रम आ गए, उसी जंगल में फटक शिला से 1.5-2 किलोमीटर दूर एक मोहकमगढ़ की कोई उजड़ी हुई स्टेट, राजा का किला चंदेलों के समय का, वहां राम और लक्ष्मण गाजीपुर के ठाकुर के लड़के नेवी में सर्विस करते थे, वायसराय को चिट्ठी लिख के दिया तुम लोग समुद्र पार हो जाओ, राज्य नेहरू को दे दो, अब तुम लोगों का यहाँ समय पूरा हो गया है, मैं राम तुम्हें आदेश देता हूँ। तो बुलाया वहां से दिल्ली, बोले तुम किस आधार पर आदेश देता हूँ, बोले राम ने कह दिया उस सही, तो दोनों के ऊपर पट्टी बांध दिया आंख में, तो आदेश दिया उस अंग्रेज वायसराय के सामने आश्रम के जंगल में ले जाके गोली मार दो। तो 3 पिस्तौल रखी थी, नियम है 60-60-60 गोली मारा, गोली चली नहीं, तो वायसराय को सूचना मिली कि गोली तीनों पिस्तौल अजमाई हुई गोली चली नहीं, बोले अच्छा ऐसी बात है तो उनको छोड़ दो, नौकरी भी गई छोड़ दिया। जब अंग्रेज चले गए नेहरू सचों के राजा हो गया तब वो कागजात पेश किया उन्होंने नेहरू को, नेहरू ने कहा गोली आपको नहीं लगी ये कोई विद्या है क्या, बोले हाँ ये ऋषियों की विद्या है, तो बोले पूरे भारत को सिखा दो ने, युद्ध में तो गोली लगती है और गोली से मरना ही नहीं है, बोले उपयुक्त जगह ढूंढनी पड़ेगी, तो ढूंढते ढूंढते वो फटक शिला के पास वो खंडहर ढूंढ लिया। अब दोनों भाई रहा करें, एक एक मजदूर को 100-100 रुपया तनख्वाह दिया करें, जबकि उस समय अरे 4-6 आना तनख्वाह रही है रोज की मजदूरी, और झोपड़ा तैयार हो गया, दोनों रहने लगे, उन्होंने भागवत सुना, फिर वो बाद में गवर्नमेंट पैसा जरूरत हो तो बैंक से ले आया करें, फिर योजना असफल हो गई थी उनकी, रॉबी ले रहे हैं दोनों, औरत रही उसका नाम भी सीता ही था राम जी की, बोले भागवत सुना जाए, पंडित को 100 रुपया भागवत का उस टाइम थी सबसे ऊंची रेट, पंडित को 700 रुपया दिया, कपड़ा लत्ता सब कुछ देके विदा कर दिया, और विदा करके दोनों भाई जंगल घूमने चले गए। लौट के आए तो पंडित वहीं बैठा था, बोले पंडित गए नहीं, बोले सीता जी से कुछ आशा थी, बोले अरे 7 भागवत का पैसा हमने दे दिया, फिर भी सीता जी से आशा थी, लक्ष्मण असंतुष्टा द्विजा नष्टा, ये ब्राह्मण नहीं है कालनेमी है, पिटाई करो इसकी। तो लक्ष्मण बड़ा आज्ञाकारी था, पंडित की थोड़ी पिटाई करके भगा दिया, जो दिया था वो छीन के गिरु के बांट दिया। पंडित रोवत गावत निर्मल दास के पास पहुंच गया। निर्मल दास खड़ाऊ पहन के ललकारते हुए जटा छटकार के पहुंच गया उनके पास। तो उन तुरंत बोले कुर्सी लाओ, महात्माओं की बड़ी सेवा करें, कुर्सी लाओ, नाश्ता लाओ। बोले नहीं चाहिए तुम्हारा नाश्ता, तुम राम नहीं हो, नकली हो, कलयुगी हो, एक ब्राह्मण को इस तरीके से मारा, तुम नीच हो, ये हो। बहुत सम बोले मैं वास्तव में राम हूं, ये लक्ष्मण है मेरा भाई, आप संत हैं, पधारे हैं, आपका स्वागत है। पंडित ने अपराध किया, उसको राह दिखाना हमारा कर्तव्य था, राम रास्ता दिखाता है, और अपराधी देखता तो रावण भी तो ब्राह्मण ही था तो मार डाला, हमने तो भी पिटाई किया है। तो बोले नहीं तुम निशाचर हो, तुम यह हो। बोले लक्ष्मण पटक शिला से जयंता आ गया है, इसकी जटा काट डालो। तो लक्ष्मण बड़ा आज्ञाकारी था, पकड़ के हंसिया से जटा काट के फेंक दिया, और जटाई तो सिद्धि थी, 15वें दिन जट्टा कट गई। अब बहुत हल्ला गुल्ला किया, रिपोर्टर रिपोर्टी किया राम लक्ष्मण के खिलाफ। इतने में निर्मल दास जी का एक शिष्य भ्रमण करने गया था, भ्रमण करके आया तो वहां फटक शिला के पास पहाड़ है, इधर पहाड़ इधर पहाड़, बीच से बरसाती नाला आया करता है। वहां ले गए अपने चेले को, एक कंदरा थी, बोले हाथ डाल के बोले इसी में बैठ के हमने भजन किया था, उसमें भालू बैठा था, उसने हाथ पकड़ लिया। तो बोले अरे छोड़ा छोड़ा वही ना, भालू बैठा, भालू पकड़ लिया। तो चेले ने उखंती होती है ना गड्ढा खोदने वाली, महात्मा के पास रहती है, तो चेले ने उखंती से मारा भालू के आंख में, तो हाथ छूट गया, तो भारी शरीर गिर पड़े पीछे की तरफ, पांव चला गया गुफा में, भालू ने पांव पकड़ लिया। फिर बहुत मारे लेकिन छोड़ा नहीं, तो चिलवा डर के मारे भागा जंगल छोड़ के, निर्मल दास के भालू खा गए। 15 दिन में जटा कट गई, 1 महीने में भालू खा गई। तब राम लखन पहुंचे आश्रम, बोले महाराज हम किसी महापुरुष का क्यों जटा काट दे, वो आपने कहा था सज्जी कर्म न हो जाए तो हम महात्मा नहीं। उनको पता चल गया फिर ये आप ही की प्रेरणा थी जो हम लोगों को ऐसा कुछ करना पड़ा। ये आकस्मिक घटनाएं घटती चली गई। महाराज जब वहां व्यवस्थित रहने लगे, पहले तो कोई महात्मा टिकता ही नहीं था, ये बरबर डाकुओं का अड्डा होने से, डाकू तो महाराज के निवास से उपरांत भी बराबर रहे, लेकिन महाराज के परिसर में 5 किलोमीटर चारों तरफ एक दुर्ग था, मतलब ऐसा दायरा बना ले इसमें कोई घटना न घटे। बोले रे महाराज के क्षेत्र में कोई कांड मत करना, नहीं तो खैरियत नहीं है। चारों तरफ तो डाका चलाई करे उनका, अरे पुश्तैनी धंधा था उन लोगों का। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।